एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो इतिहास, परिवार और अस्तित्व की कई परतों को खोलती है। ललिता टैडमी का बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास है केन रिवर।
बिल्कुल, और इसकी लेखिका ललिता टैडमी, उनकी अपनी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है।
सही कहा। सोचिए, सिलिकॉन वैली के एक कामयाब बिजनेस एग्जीक्यूटिव।
बिल्कुल, और वो अपनी कॉर्पोरेट दुनिया छोड़कर अपने पुरखों की कहानी खोजने निकल पड़ती है। मतलब ये जो सफर है ना, यही उनके लिखने को एक बहुत ही सच्ची और गहरी भावना देता है।
हाँ, और ये उपन्यास मतलब केन रिवर जो 2001 में आया, ये उनकी पहली किताब थी और इसी खोज का नतीजा है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, ये असल में उनकी अपनी नानी के परिवार की कहानी है। लेखिका इसे फैक्शन कहती है।
फैक्शन? अच्छा, मतलब फैक्ट और फिक्शन का मिक्स।
हाँ हाँ, वही तथ्य और कल्पना का संगम।
ये सीधे उनकी ननिहाल की चार पीढ़ियों की महिलाओं की जिंदगियों पर आधारित है।
और ओपरा विनफ्री ने जब इसे चुना अपने बुक क्लब के लिए, तब तो ये दुनिया भर में पहुंच गई कहानी।
हाँ, तब इसे बहुत पहचान मिली।
कहानी हमें लुइजियाना ले जाती है, केन रिवर इलाके में। वहाँ एक खास क्रियोल संस्कृति थी, है ना?
हाँ बिल्कुल, जहाँ मिश्रित यूरोपीय, अफ्रीकी और जो वहाँ के मूल अमेरिकन थे उनकी विरासत वाले लोग रहते थे। एक अलग ही समुदार था।
तो उपन्यास इसी पृष्ठभूमि में चार पीढ़ियों की अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं की कहानी बुनता है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी तो नहीं लगती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दौर के अमेरिकी इतिहास का आईना है। मतलब गुलामी की क्रूरता, फिर वो गृहयुद्ध, उसके बाद पुनर्निर्माण काल की जो थोड़ी उम्मीदें जगी,
और फिर वो जिम क्रो का दमनकारी दौर, सब कुछ है इसमें।
हाँ, नस्ली अलगाव का वो मुश्किल वक्त। तो आज हमारी चर्चा का केंद्र होंगी ये चार महिलाएं, एलिजाबेथ, सुजेट, फिलोमीन और एमिली। हम उनके संघर्ष, उनका जो एक लचीलापन था और कैसे वो उस मुश्किल समाज में आज़ादी के मायने खोजती रहीं, इसे समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, ये यात्रा हमें दिखाएगी कि कैसे साधारण महिलाएं भी असाधारण परिस्थितियों में टिकी रहती हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाती चलती हैं।
तो कहानी शुरू होती है एलिजाबेथ से। वो इस परिवार की जड़ हैं, कह सकते हैं।
हाँ, एलिजाबेथ, उसका जन्म गुलामी में हुआ, डर्बन परिवार के बागान पर। सोचिए जरा उसकी पूरी जिंदगी, एक अंतहीन संघर्ष, खेतों में वो कमर तोड़ मेहनत, अपनों को खोने का दर्द और हर वक्त ये डर कि बच्चे कहीं बिछड़ ना जाएं।
और उसकी विरासत भी मिश्रित थी, है ना, अफ्रीकी और मूल अमेरिकी।
हाँ, दोनों। पर समाज के लिए तो वो सिर्फ एक गुलाम थी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना और अपने बच्चों की
रक्षा करना। हाँ बिल्कुल, एलिजाबेथ का चरित्र इस पूरी कहानी की नींव रखता है, है ना?
बिल्कुल, वो हमें गुलामी की उस असलियत से मिलवाती है जहाँ इंसान की पहचान ही छीन ली जाती है। एक माँ होने का मतलब भी वहाँ लगातार डर में जीना था।
पर जो बात सबसे ज्यादा असर करती है वो है उसकी अंदरूनी ताकत। बाहर से भले ही वो मजबूर दिखे, पर अंदर से वो टूटी नहीं थी।
सही कहा। लेखिका ने शायद इसी भावना को दिखाने की कोशिश की है जब वो हमें महसूस कराती हैं कि वो स्वतंत्र नहीं थी, पर वो कुछ भी नहीं थी।
उफ, ये लाइन बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये गुलामी के खिलाफ एक तरह का मौन प्रतिरोध है, अपनी पहचान बचाने का संकल्प।
बिल्कुल, और उसकी यही शांत समझदारी और मुश्किलों से लड़ने की ताकत, यही वो विरासत है जो वो अपनी बेटी सुजेट को देती है। और जब सुजेट पैदा होती है, एलिजाबेथ एक अजीब सी कश्मकश में पड़ जाती है,
क्योंकि सुजेट की त्वचा का रंग हल्का था।
हाँ, वो देखती है कि सुजेट का रंग थोड़ा हल्का है, और उस समय के समाज में ये दोधारी तलवार जैसा था। खतरा भी था, पर शायद भविष्य में कुछ अलग रास्ते भी खुल सकता था।
एलिजाबेथ इस उलझन को समझती है और ये समझ उसके आगे के फैसलों पर असर डालती है।
यहीं से कहानी सुजेट की तरफ मुड़ती है।
हाँ, अब कहानी सुजेट पर आती है।
उसकी हल्की त्वचा, जिसे उस समय क्वाड्रून कहते थे।
क्वाड्रून मतलब जिसके परदादा परदादी में से कोई एक श्वेत हो।
हाँ बिल्कुल, तो ये पहचान उसे खेतों की जिंदगी से एक अलग रास्ते पर ले जाती है। उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आता है जब उसे एक अमीर फ्रांसीसी क्रियोल बागान मालिक नार्सिस फ्रेडियू, उसकी उपपत्नी बनने को मजबूर किया जाता है।
अच्छा, ये प्लसाज व्यवस्था जिसके बारे में हमने पढ़ा है।
हाँ, प्लसाज, ये लुजियाना में काफी चलती थी, मतलब एक अनौपचारिक रिश्ता, पर समाज में एक तरह से माना जाता था। श्वेत पुरुष मिश्रित नस्ल की महिलाओं को रखते थे, घर और कुछ पैसे देते थे, पर पत्नी का दर्जा कभी नहीं।
तो सुजेट के लिए ये खेतों से तो निकलना हुआ, पर
एक तरह का सुनहरा पिंजरा ही था वो। हाँ, उसे भौतिक आराम मिला, पर अंदर से वो हमेशा असुरक्षित महसूस करती थी। कानूनी तौर पर तो कोई हक था ही नहीं। इसी रिश्ते से उसकी बेटी फिलोमीन और दूसरे बच्चे हुए।
ये प्लासाज व्यवस्था अपने आप में कितनी जटिल थी। नस्ल, लिंग, शक्ति, सबके समीकरण कितने उलझे हुए थे।
बिल्कुल, और सुजेट की जिंदगी इसी उलझन का आईना है। एक तरफ शायद वो नार्सिस से जुड़ाव भी महसूस करती होगी, पर दूसरी तरफ उसे अपनी असलियत का भी पूरा एहसास था। वो उसकी पत्नी नहीं थी, उसके बच्चे नार्सिस की जायदाद के वारिस नहीं बन सकते थे।
ये दिखाता है कि कैसे असमान रिश्तों में भी भावनाएं पनप सकती हैं, पर वो बराबरी का रिश्ता कभी नहीं बन पाता।
हाँ, और वो धीरे धीरे सीखती है कि सुनहरे पिंजरे में अपनी थोड़ी बहुत ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। वो एक डरी हुई लड़की से एक यथार्थवादी माँ बन जाती है,
जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचती है।
हाँ, वो समझ जाती है कि उसे दुनिया के कठोर शर्तों पर ही जीना होगा। ये उस एहसास जैसा है जैसे उपन्यास में है कि उसे एक टूटी हुई चीज पर जीना सीखना पड़ता है। दुनिया द्वारा कुछ भी न दिए जाने पर उसी टुकड़े को अपनी दुनिया बनाना पड़ता है।
ये एक दर्दनाक समझौता है, पर शायद उस वक्त वही रास्ता था।
हाँ, शायद। और ये समझौता अगली पीढ़ी, मतलब फिलोमीन, के लिए एक अलग जमीन तैयार करता है। फिलोमीन को भी अपनी माँ की तरह हल्की त्वचा मिली, पर उसका स्वभाव
एकदम अलग। उसमें एक आग थी, है ना, विद्रोह था।
हाँ, फिलोमीन ज्यादा इरादों वाली और रणनीतिक सोच रखती है। वो भी एक शादीशुदा श्वेत पुरुष क्लेमेंट ग्रैपियन के साथ प्लासाज में आती है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ गुजारा करना नहीं है।
उसकी नजरें कहीं और थीं।
बिल्कुल, आर्थिक आजादी और बच्चों के लिए बेहतर भविष्य, और इसका मतलब था जमीन और शिक्षा। उसकी कहानी तो अमेरिकी इतिहास के सबसे उथल पुथल वाले दौर से गुजरती है, ग्रह युद्ध, गुलामी का अंत और फिर वो पुनर्निर्माण का दौर,
जो बहुत मुश्किल था। उम्मीदें भी थीं और भयानक हिंसा भी।
हाँ, देश को जोड़ने और अश्वेतों को अधिकार देने का वो प्रयास बहुत उथल पुथल भरा था।
और इसी माहौल में फिलोमीन का इरादा देखना कमाल है। वो शायद पहली पीढ़ी थी जिसने ये समझा कि सिर्फ गुलामी से मुक्ति काफी नहीं है जब तक आपके पास आर्थिक ताकत ना हो।
सही कहा।
उसके लिए जमीन का मालिक होना और शिक्षा पाना, ये सिर्फ संपत्ति या ज्ञान नहीं थे, ये आजादी के असली औजार थे। ये बहुत बड़ी सीख है ना?
हाँ,
कि कैसे हाशिए पर धकेले गए समुदायों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान और असली आजादी ला सकती है।
बिल्कुल, और वो कर दिखाती है। वो न सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की आजादी खरीदती है, बल्कि जमीन खरीदकर और दूसरे काम करके एक सफल व्यवसायी भी बनती है।
उस जमाने में एक अश्वेत महिला का जमीन खरीदना, ये तो अपने आप में एक क्रांति थी।
हाँ बिल्कुल, जमीन का वो टुकड़ा उसके लिए सिर्फ सौदा नहीं था जैसा उपन्यास में महसूस होता है, ये इस बात का सबूत था कि वो किसी की संपत्ति या उपपत्नी से बढ़कर थी। ये सबूत था कि उसका अस्तित्व था।
वाह, ये उसकी पहचान, उसकी मेहनत, उसके अपने होने का सबूत था। फिलोमीन एक तरह से पुरानी दुनिया और अश्वेत आत्मनिर्णय की नई दुनिया के बीच पुल का काम करती है।
बिल्कुल, उसका जीवन दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प भी इतिहास की धारा को मोड़ सकता है।
और फिलोमीन के इसी संघर्ष का फल मिलता है उसकी बेटी एमिली को, जिसे प्यार से टाइट बुलाते हैं।
हाँ, अब हम कहानी के चौथे और आखिरी हिस्से में आते हैं। एमिली या टाइट,
वो अपनी माँ की वजह से पढ़ी लिखी है, बोलती है, आदर्शवादी भी है।
हाँ, वो उस पीढ़ी की है जो अतीत के बोझ को, मतलब प्लासाजी की विरासत या त्वचा के रंग के आधार पर मिलने वाले फायदे नुकसान, जिसे कलरिज्म कहते हैं, उसे जानबूझकर नकारना चाहती है।
और वो टीचर बनने का फैसला करती है अश्वेत बच्चों को पढ़ाने के लिए।
हाँ, ये भी एक बड़ा कदम था, शिक्षा को समुदाय के उत्थान का जरिया बनाना। पर उसकी जिंदगी का सबसे क्रांतिकारी फैसला शायद उसकी शादी थी
जैस्पर से, जो एक मेहनती गहरे रंग का अश्वेत व्यक्ति था।
हाँ, और ये चुनाव उसके परिवार और समाज दोनों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि उस केन रिवर क्रियोल समाज में भी अंदर ही अंदर त्वचा के रंग को लेकर ऊंच नीच थी। एमिली का जैस्पर को चुनना इस रंग भेद के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी।
तो ये अतीत की प्लासाज व्यवस्था से एकदम अलग हटना हुआ, जो श्वेत पुरुषों के साथ समझौतों पर टिकी थी।
बिल्कुल, ये नस्लीय एकजुटता और अपने ही समुदाय के भीतर रिश्ते मजबूत करने की तरफ एक सोचा समझा कदम था।
ये दिखाता है कि आज़ादी के मायने हर पीढ़ी के लिए कैसे बदलते हैं। एलिजाबेथ के लिए जिंदा रहना था, सुजेट के लिए थोड़ी सुरक्षा पाना, फिलोमीन के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता,
और एमिली के लिए, उसके लिए आज़ादी शायद अपनी शर्तों पर प्यार करने में थी, अपने समुदाय के साथ खड़े होने में, अपने उसूलों पर जीने में थी।
हाँ, जैसा उपन्यास में लगता है, एमिली जानती थी कि उसने एक कठिन रास्ता चुना था, लेकिन ये उनका अपना रास्ता था। ये एक ऐसी स्वतंत्रता थी जिसे उसके पूर्वजों ने कभी नहीं जाना था, अपने स्वयं के संघर्ष को चुनने की स्वतंत्रता।
ये बहुत गहरा विचार है। उसके पुरखों पर तो संघर्ष थोपे गए थे, पर एमिली अपना संघर्ष खुद चुन रही थी अपने आदर्शों के लिए।
और ये रास्ता आसान नहीं था, जाहिर है, जिम क्रो का दौर था।
बिल्कुल, कानूनी तौर पर नस्ली अलगाव था, अश्वेतों के खिलाफ हिंसा आम थी। एमिली और जैस्पर को गरीबी, सामाजिक बहिष्कार, नस्ली नफरत सब झेलना पड़ा। एमिली का संघर्ष था अपने आदर्शों और उस कठोर सच्चाई के बीच संतुलन बनाने का।
तो इस पीढ़ी तक आते आते परिवार की कहानी व्यक्तिगत समझौतों से आगे बढ़कर सामूहिक संघर्ष की कहानी बन जाती है।
हाँ, बिल्कुल।
तो इन चार महिलाओं के इस यात्रा को देखें तो कई अहम विषय उभरते हैं। सबसे पहले तो ये महिलाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ताकत और हिम्मत, मैट्रिलिनियल स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, कहानी माओं और बेटियों के जरिए ही आगे बढ़ती है।
हाँ, बिल्कुल। और फिर नस्ल, त्वचा के रंग यानी कलरिज्म, और पहचान की वो उलझने, खासकर लुइसियाना के उस क्रियोल समाज में जहाँ ये सीमाएं बहुत धुंधली और दर्दनाक भी थीं। प्लासार्ड जैसी व्यवस्थाएं इसी का हिस्सा थीं।
उपन्यास दिखाता है कि कैसे नस्लीय पहचान सिर्फ बाहर से नहीं थोपी जाती, समुदाय के अंदर भी इसके गहरे मायने होते हैं।
सही कहा। और स्वतंत्रता की जो बात है, वो भी लगातार बदलती रहती है। हर पीढ़ी के लिए उसके मायने अलग हैं, उसके संघर्ष अलग हैं।
और क्या चीजें हैं जो इस स्वतंत्रता को पाने में मदद करती हैं? उपन्यास बार बार दो चीजों पर जोर देता है, जमीन
और शिक्षा। ये सिर्फ जरूरतें नहीं हैं, ये आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए मौके बनाने के साधन बन जाते हैं।
इन सब विषयों को लेखिका ने बुना भी बहुत खूबसूरती से है। वो जो ऐतिहासिक तथ्य और पारिवारिक कहानियों का मिश्रण है, जिसे वो फैक्शन कहती हैं,
उससे कहानी में एक अजीब सी विश्वसनीयता और भावनात्मक गहराई आ जाती है। लगता है हम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इतिहास का कोई अनदेखा पन्ना जी रहे हैं।
और कहने का तरीका भी, हर पीढ़ी की कहानी हमें उसी महिला के नज़रिए के पास ले जाती है।
हाँ, वो थर्ड पर्सन लिमिटेड पर्सपेक्टिव, उससे हम उनके अंदर के संघर्ष, उनकी उम्मीदें, उनके डर को महसूस कर पाते हैं।
प्रतीक भी बहुत गहरे हैं। वो केन रिवर नदी खुद समय के बहाव और इतिहास की गवाह है, और ज़मीन, जैसा हमने कहा, आज़ादी और विरासत का प्रतीक बन जाती है।
बिल्कुल। और लेखिका की भाषा बहुत संवेदनशील है, चित्रात्मक है। वो उस समय और जगह को आंखों के सामने जिंदा कर देती हैं। बागानों की वो गर्मी, नदी का बहना, घरों में पकता खाना, लोगों के चेहरे,
हाँ, सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सिर्फ दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचता है।
बिल्कुल। ये उपन्यास इतिहास को सिर्फ तारीखों और घटनाओं से निकालकर व्यक्तिगत और मानवीय बना देता है,
और हमें उन अनगिनत महिलाओं के हिम्मत का कायल बना देता है, जिनकी कहानियां अक्सर इतिहास में कहीं खो जाती हैं। ये याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़े नामों से नहीं बनता,
बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे संघर्षों, समझौतों और प्यार से बनता है।
और ये शायद इस बात पर भी जोर देता है कि याद रखना कितना जरूरी है। जैसे कहीं कहा गया है, हम जो याद रखते हैं वही बन जाते हैं।
हाँ, ये उपन्यास उन भूली बिसरी यादों को, उन अनकही कहानियों को सामने लाता है और हमें एहसास कराता है कि हमारा आज हमारे कल की नींव पर ही खड़ा है, चाहे हम उसे जाने या न जाने।
ये उपन्यास हमें सिखाता है कि तरक्की अक्सर धीमी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, और इंसान की जो हिम्मत है, वो मुश्किलों के बावजूद रास्ता निकाली लेती है।
और ये उन लाखों गुमनाम नायिकाओं को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिनके संघर्षों और बलिदानों पर आज हमारी दुनिया टिकी हुई है।
इस कहानी को जानने के बाद मन में ये सवाल जरूर उठता है कि हम अपने परिवार की, अपने समुदाय की अनकही कहानियों को कैसे सहेजते हैं और उनसे भविष्य के लिए क्या सीखते हैं।
सोचने वाली बात है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।